आपको हमने भूमिका में सारी बातों को संक्षेप में समझा दिया है। अब आगे का पाठ जो है समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए, ये सबसे पहले आकांक्षा रहित का उदाहरण दे रहे हैं। अत एव माने इसीलिए, किस लिए कि आकांक्षा युक्त, योग्यता युक्त और सन्निधि युक्त पदों का समूह जो है वाक्य कहलाता है। इसमें से इसमें जो आकांक्षा युक्त ये जो विशेषण लगाया गया, अत एव इसीलिए, क्या इसलिए, तो गौह अश्वः पुरुषः हस्ति इति पदानि न वाक्यम। यहाँ भी जो है ना चार पदों का समूह है, गौह पद है, अश्वः पद है, पुरुषः पद है और हस्ति पद है। अब देखिए, गौह माने गाय, अश्वः माने घोड़ा, आ पुरुषः माने इंसान और हस्ति माने हाथी। अब बताइए इसका कोई आपस में जो है ना कोई आकांक्षा है? गाय को कोई घोड़ा से लेना देना नहीं है, घोड़ा गाय घोड़ा को पुरुष से लेना देना नहीं है, घोड़ा है गाय घोड़ा और पुरुष को हाथी से लेना देना नहीं है। तो इस तरह से जो है ये जो चारों पद हैं, इति पदानि न वाक्यम, ये पद जो हैं ये वाक्य नहीं कहलाते हैं। क्यों नहीं कहलाते हैं? तो परस्पर आकांक्षा विरहित, परस्पर मतलब आपस में जो है इन शब्दों में या इन पदार्थों में आकांक्षा का विरह है। आकांक्षा का विरह है मतलब आकांक्षा का अभाव है। तो आकांक्षा का अभाव होने के कारण तो ये जो अभी गौरस्व पुरुषो हस्ति कहा गया, ये पद तो कहलाएंगे लेकिन ये वाक्य नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनमें परस्पर आकांक्षा का विरह है। आगे वही कहा, परस्पर आकांक्षा विरहात, क्योंकि ये सब के सब कर्ता में प्रयुक्त हैं, प्रथमा एक वचन में प्रयोग है। तो ये कर्ता जो है उसकी आकांक्षा क्रिया से होगी, कर्म से होगी, करण से होगी। कर्ता की आकांक्षा कर्ता से कैसे होगी? प्रथमांत की आकांक्षा जो है प्रथमांत के साथ नहीं हो सकती। तो आकांक्षा विरह होने के कारण ये गौरस्व पुरुषो हस्ति इन पदों का जो समूह है वह वाक्य नहीं कहलाएगा। अब दूसरा जो है योग्यता, योग्यता का मतलब मैंने बताया था परस्पर पदार्थेषु परस्पर अन्वय योग्यता। तो जहाँ पर पदार्थों में परस्पर अन्वय की योग्यता हो वही पदों का समूह वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया इन्होंने, अग्निना सिंचेत, कि आग से सिंचाई करो। अब देखो यहाँ पर आग से सिंचाई हो सकती है क्या? पानी से तो सिंचाई होगी, आग से जो है जलाया जा सकता है, आग से पकाया जा सकता है, आग से गर्म किया जा सकता है, आग से सिंचाई तो की नहीं जा सकती। तो इस तरह से अगर अग्निना सिंचेत कहते हैं तो इसमें अग्निना और सिंचेत दो पदों का जो समूह है इति न वाक्यम, ये वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें योग्यता का विरह है। अर्थात अग्नि पदार्थ और सिंचन पदार्थ जो है इन दोनों पदार्थों में परस्पर संबंध होने की योग्यता का अभाव है। आगे कहते हैं कि न ही अग्नि से कयो हो परस्पर अन्वय योग्यता अस्ति। अग्नि का और सेक का, ये सेक क्या है? तो वो सिंचन क्रिया जो होती है ना उसी का नाम है सेक। तो अग्नि का सेक क्रिया के साथ परस्पर अन्वय योग्यता का अभाव है, इसीलिए यह वाक्य नहीं कहलाएगा। आगे कहते हैं कि तथा ही मतलब अग्निना सिंचेत, इस तरह का जो वाक्य है योग्यता विरह वाला वाक्य, इसमें अग्निना इति तृतीया, अग्निना में जो तृतीया विभक्ति है उस तृतीया विभक्ति के द्वारा, तृतीया विभक्ति जो है किस अर्थ में आई होगी? तो आप जानते हैं ना करणे तृतीया, करण में तृतीया विभक्ति होती है। तो अग्निना में जो तृतीया है उस तृतीया का अर्थ हो गया करण। तो किसका करण? तो अच्छा करण जो होता है वह कारण ही तो होता है, कारण विशेष जो है। आपने करण का पहले बहुत सारा लक्षण पढ़ा है कि व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। व्यापार करता हुआ जो, व्यापार को करता हुआ जो असाधारण कारण है, असाधारण माने विशेष कारण है, वही कारण करण कहलाता है। तो अग्निना में जो तृतीया विभक्ति है उस तृतीया का अर्थ है कारण या करण कह लीजिए, और कारण होगा तो कार्य भी होगा, तो यहाँ कार्य कौन है तो आगे कहते हैं सेक रूपं कार्यम प्रति, यहाँ पर सेक रूप जो है कार्य है, माने सिंचन जो है वह कार्य है, तो सिंचन रूपी कार्य के प्रति अग्नि रूपी करण का यहाँ पर जो है वाक्य में प्रयोग किया गया है। वही कह रहे हैं कि अग्निना इति तृतीया, अग्निना में रहने वाली जो तृतीया विभक्ति उस विभक्ति के द्वारा सेक रूपम कार्यम प्रति, सिंचन रूप कार्य के प्रति कर्णत्वम अग्नेह प्रतिपादितम, कर्णत्व धर्म जो है अग्नि का वो प्रतिपादन किया गया है यहाँ अग्निना में तृतीया के द्वारा। नौच अग्नि ही सेके करणी भवितुम योग्य, अग्नि जो पदार्थ जो अग्नि जो है वह सेक क्रिया के लिए कभी भी करणी होने के योग्य, करण होने के योग्य नहीं है, कारण होने के योग्य नहीं है। तो कार्य कारण भाव लक्षण संबंधे अग्नि सेकयो हो अयोग्यत्वात्, अब यहाँ पर तृतीया के द्वारा अग्निना सिंचेत में तृतीया के द्वारा कार्य कारण भाव लक्षण संबंध बताया गया है। इसमें कार्य कौन है सिंचेत, कारण कौन है अग्नि, इन दोनों में कौन सा संबंध होना चाहिए, कार्य कारण भाव लक्षण संबंध होना चाहिए। यह जो अगर कार्य कारण भाव लक्षण संबंध की योग्यता होगी तो यहाँ योग्यता मानी जाएगी, और कार्य कारण भाव लक्षण संबंध की योग्यता नहीं होगी तो योग्यता का अभाव माना जाएगा। वही कह रहे हैं कि इसमें तृतीया विभक्ति के द्वारा जो है सेक रूप कार्य के प्रति अग्नि को में कर्णत्व का प्रतिपादन किया गया, और अग्नि जो है वो सेक क्रिया में कभी भी करण बनने के योग्य नहीं है। इस तरह से कार्य कारण भाव लक्षण संबंध जो होना चाहिए यहाँ अग्निना और सिंचेत में, उसमें अग्नि सेकयो अयोग्यत्वात्, उस संबंध के लिए अग्नि और सेक जो है परस्पर अयोग्य है। अग्निना सिंचेत इति नभा, इसीलिए अयोग्य होने के कारण अग्नि और सेक को परस्पर कार्य कारण भाव लक्षण जो संबंध है उस संबंध की दृष्टि से अयोग्य होने के कारण अग्निना सिंचेत जो है यह वाक्य नहीं कहलाएगा। इस तरह से इन्होंने योग्यता के बारे में विवरण दिया। अब सन्निधि के बारे में विवरण देते हैं। एवं कहा कि इसी तरह से मतलब जैसे आकांक्षा विरह वाला जो है वाक्य नहीं कहलाता, योग्यता विरह वाला वाक्य नहीं कहलाता, ऐसे ही सन्निधि विरह वाला जो है वह भी वाक्य नहीं कहलाएगा। उसी का उदाहरण देते हैं। एवं एकैक सह प्रहरे प्रहरे सह उच्चारितानि गामानय इत्यादि पदानि न वाक्यम, कहा कि गामानय यह जो पदों का समूह है गाम आनय, इसमें गाम को जो है ना एक प्रहर में उच्चारण किया, और वह प्रहर बीत जाने के बाद दूसरे प्रहर में जो है आनय पद का उच्चारण किया, तो इस तरह से अगर उच्चारण किया तो ये पद जो है कभी वाक्य नहीं कहलाएगा। एवं एकैक सह माने एक एक करके, एक बार गाम को और एक बार आनय को, प्रहरे प्रहरे एक एक प्रहर में, प्रहर का मतलब होता है 3 घंटा, तो एक प्रहर में गाम का उच्चारण किया, दूसरे प्रहर में जो है आने का उच्चारण किया, सह उच्चारितानि, इस तरह से जो सह नहीं असह उच्चारितानि, इस तरह से असह उच्चारण जो है माने साथ साथ उच्चारण नहीं करना जो है वो, इस कारण से गामानय इत्यादि वाक्य जो है, गामानय इत्यादि जो पदों का समूह है ये न वाक्यम, ये वाक्य नहीं होगा। आगे कहते हैं सत्याम अपि परस्पर आकांक्षायाम, माने परस्पर आकांक्षा रहने के बावजूद भी सत्याम अपि परस्पर अन्वय योग्यतायाम, परस्पर अन्वय की योग्यता होने के बावजूद भी परस्पर सान्निध्य अभावात, परस्पर सान्निध्य का अभाव है गाम पद में और आनय पद में, अर्थात सन्निधि का अभाव है, इसीलिए यह वाक्य नहीं कहलाएगा। तो कहा कि यहाँ पर खाली तमाम जो आपने उदाहरण दिया इसमें कोई उदाहरण नहीं था, ये सबके सब प्रत्युदाहरण थे। उदाहरण तो वो होगा ना जिसमें जो वाक्य का लक्षण जाएगा, इन सब में तो किसी में वाक्य का लक्षण गया ही नहीं, किसी में आकांक्षा का अभाव, किसी में योग्यता का अभाव, किसी में सन्निधि का अभाव, और जो उसमें लक्षण न जाता हो वह तो प्रत्युदाहरण कहलाता है। तो लक्षण जाएगा किस में वो तो बताइए, तो वो बताते हैं उदाहरण, अब बता रहे हैं। ऊपर के जो तीनों थे ना, गौरस्व पुरुषो हस्ति, ये प्रत्युदाहरण था। अग्निना सिंचेत, ये भी प्रत्युदाहरण था। गामान, ये भी प्रत्युदाहरण था। अब उदाहरण बता रहे, यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि। ये वेद का वाक्य है, इसमें इसका अर्थ ये है कि स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना से ज्योतिष्टोम नामक याग करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, स्वर्ग काम ये कर्ता हो गया, स्वर्ग की कामना वाला। ज्योतिष्टोमेन ये करण कारक हो गया, यजेत ये क्रिया हो गई, और ये परस्पर सबके सब जो है साकांक्ष हैं, योग्यता से युक्त हैं और सन्निधि से युक्त भी हैं। तो इस तरह का जो पदों का समूह है वह वाक्य कहलाएगा। यह जो हो गया ना, ये वैदिक वाक्य हो गया। वाक्य भी दो तरह का होता है, जैसे भाषा संस्कृत दो तरह की होती है ना, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसी तरह से वाक्य भी दो प्रकार का होता है, वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य। तो ये केशव मिश्र जी ने दोनों तरह का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया। तो वैदिक वाक्य हो गया ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, और लौकिक वाक्य का उदाहरण देते हैं, यथा च नदी तीरे पंच फलानि संति इति। नदी के किनारे पांच फल हैं, इस तरह का नदी तीरे पंच फलानि संति, ये जो लौकिक वाक्य है, ये जो पदों का समूह है, ये भी वाक्य कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो है सबके सब आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त है। यथा च तानि एव गामानय इत्यादि पदानि अविलंबित उच्चरितानि। ताकि इतना ही नहीं है, वह जो हमने सन्निधि का जो दिया था उदाहरण गामानय, वह भी अगर अविलंब से उच्चारित हो, प्रहरे प्रहरे नहीं हो करके एक ही साथ, जैसे मैं कहता हूँ गामानय, इस तरह से अगर सह उच्चारण हो बिना विलंब के, तो वह अभी जो है गामानय वाक्य कहलाएगा। अब जो है यहाँ पर शास्त्रार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है, कुछ शंका समाधान किया जा रहा है। कहते हैं कि ननु अत्रापि न पदानि साकांक्षानि। कहा कि अत्रापि, अत्रापि का मतलब ये जो था ना वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य, तो लौकिक वाक्य में था कि नदी तीरे पंच फलानि संति, अथवा गामानय अविलंबेन उच्चारित जो है, और वैदिक वाक्य था ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। कहा कि इन सबों में भी नौ पदानि साकांक्षानि, पद जो है वह साकांक्ष नहीं है। साकांक्ष का अर्थ क्या होगा, आकांक्षा सहितानि साकांक्षानि, माने आकांक्षा से युक्त पद नहीं है, क्योंकि आकांक्षा पद में कभी नहीं होती। आकांक्षा कहाँ होती है, पद के अर्थ में होती है। ठीक है, शब्द में कोई आकांक्षा होगी कि शब्द के अर्थ में आकांक्षा होगी, तो वही कहते हैं कि ननु अत्रापि न पदानि साकांक्षानि, पद जो है वह साकांक्ष यहाँ भी नहीं है। कौन है, किंतु अर्थाः, किंतु अर्थ जो है शब्द के, पद के, वो अर्थ जो है साकांक्ष होते हैं। और वाक्य का जो लक्षण कहा गया, उसमें कहा गया कि आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूहः, तो यहाँ तो जो है आकांक्षा युक्त पदों का समूह वाक्य कहलाता है, ये कहा गया। जबकि आकांक्षा से युक्त कभी पद हो ही नहीं सकता। क्या होगा, आकांक्षा से युक्त पदों का अर्थ जो होगा वह आकांक्षा से युक्त होगा। इस तरह से जो लक्षण का किया गया, उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, और फिर उसका समाधान भी बताया जाएगा। तो चलिए फिर से देखते हैं, ननु अत्रापि, अत्रापि मतलब उदाहरित वाक्य अपि न पदानि साकांक्षानि, पद जो है वह साकांक्ष नहीं होते, किंतु अर्थाः, किंतु अर्थ साकांक्ष होते हैं। कैसे, तो फलादीनाम आधेयानाम तीरादि आधार आकांक्षितत्वात्। ताकि नदी तीरे पंच फलानि संति, ये जो वाक्य है इसमें पंच फलानि जो है यह क्या है, आधेय है। आधेय कहते हैं जो कहीं टिका रहता है, कहीं बैठा रहता है, कहीं पर स्थित रहने वाला जो है वह आधेय कहलाता है, और जहाँ स्थित रहता है जिस जगह पर वह आधार कहलाता है। तो नदी तीरे पंच फलानि संति में पंच फलानी यह पद जो है इसका क्या अर्थ है, पांच फल, ये जो पांच फल जो है ये क्या है, आधेय है, अर्थात किसी पर टिकने वाले हैं, किसी में रहने वाले हैं, तो ये आधेय हैं। और आधेय जो है हमेशा साकांक्ष होता है किसके प्रति, आधार के प्रति। तो ये जो पांच फल आधेय हैं, ये जब ही पंच फलानी कहेंगे तो आकांक्षा होगी कि कुत्र, तो आधार की आकांक्षा होगी, और उसके समन के लिए कहा कि नदी तीरे। तो आधार जो है आधेय के प्रति साकांक्ष होता है, और आधेय जो है वह आधार के प्रति साकांक्ष होता है। क्यों साकांक्ष कब होता है, जब एक दूसरे के बिना अस्तित्व ही संभव न हो तो वह साकांक्ष होता है। जैसे आधेय के बिना आधार का अस्तित्व संभव नहीं है, और आधार के बिना आधेय का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे जब तक संतान नहीं होगा वह बाप नहीं कहलाएगा, ठीक है, तो संतान के बिना बाप का जो है अस्तित्व असंभव है, और बाप के संतान के बिना बाप का अस्तित्व असंभव है, और बाप के बिना जो है संतान का अस्तित्व असंभव है। इसलिए जिसका जिसके बिना जिसका अस्तित्व संभव न हो वो परस्पर साकांक्ष होता है। ऐसे गुरु शिष्य है, जब शिष्य नहीं होगा तो गुरु कैसे कहलाएगा, और गुरु नहीं रहेगा तो शिष्य कैसे कहलाएगा। इस तरह से गुरु पदार्थ जो है वह शिष्य पदार्थ के प्रति साकांक्ष है, और शिष्य पदार्थ जो है वह गुरु पदार्थ के प्रति साकांक्ष है। तो यहाँ भी पंच फलानी जो है यह आधे है, वह आधार जो है नदी तीरे उसके प्रति साकांक्ष है। तो वही बताया फलादीनाम आधेयानाम तीरादि आधार आकांक्षितत्वात्। फल आदि आधेय अर्थ जो हैं वो तीर आदि आधार अक्ष के अर्थ के प्रति आकांक्षित हैं, मतलब आकांक्षा से युक्त हैं। तो अभी क्या हुआ कि पद जो है साकांक्ष नहीं होता, कौन होता है साकांक्ष, पदार्थ जो है वह साकांक्ष होता है। ये जो है पहले सोपान में, पहली सीढ़ी में, पहले स्टेप में जो है ये कहा गया कि पद साकांक्ष होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सूक्ष्म विचार किया गया, और सूक्ष्म विचार करके जो है कहा गया कि पद वस्तुतः साकांक्ष नहीं होता, वस्तुतः जो है ना पदार्थ साकांक्ष होता। अब उससे भी ज्यादा सूक्ष्म विचार करके कहते हैं कि न च विचार्य माने, माने अगर विचार किया जाए और भी, तो अर्था अपि न साकांक्षा, अर्थ भी जो है ना साकांक्ष नहीं होते हैं। अब क्यों, क्योंकि देखिए आकांक्षा जो है, आकांक्षा माने क्या होता है, इच्छा, और इच्छा जो है वो किस में हो सकती है, चेतन प्राणी जो है उसमें आकांक्षा हो सकती है, अचेतन में कभी आकांक्षा होगी, पत्थर में आकांक्षा हो सकती है क्या, नहीं होगी, क्योंकि वह अचेतन है। लेकिन पशु में, पक्षी में, इंसान में आकांक्षा हो सकती है, होती है, क्योंकि वह चेतन पदार्थ है। इसीलिए और भी सूक्ष्म विचार करने पर कहते हैं कि अर्थापि न साकांक्षा, पद का अर्थ जो है, पदार्थ जो है वह भी साकांक्ष वस्तुतः नहीं होता। क्यों, तो आकांक्षा या इच्छात्मकत्वेन, आकांक्षा जो है वह इच्छात्मक होती है, इच्छा आत्मक। मैंने पहले भी इस तरह के शब्द की कभी व्याख्या की होगी, फिर से मैं कर देता हूँ, इच्छा आत्मा यस्य असौ इच्छात्मकम। इसमें इस तरह का जहाँ शब्द हो ना, और उसमें आत्मा शब्द का प्रयोग हो, तो उस आत्मा का अर्थ होता है स्वरूप। तो इच्छा आत्मा यस्य अर्थात इच्छा स्वरूपम यस्य, इच्छा ही है स्वरूप जिसका, किसका, आकांक्षाया। तो आकांक्षा का स्वरूप कैसा होता है, इच्छात्मक स्वरूप होता है, मान इच्छा ही होता, इच्छा को ही हम आकांक्षा कहते हैं। और वह जो आकांक्षा है वो चेतन धर्मत्वात्, वो चेतन में रहने वाला धर्म है, अचेतन में रहने वाला धर्म नहीं है। तो पद और पदार्थ जो है दोनों अचेतन है, उसमें आकांक्षा वस्तुतः नहीं रहेगी। आकांक्षा रहेगी तो कहाँ रहेगी, तो चेतन में रहेगी, मतलब आत्मा में रहेगी। वह बोधा जो है, जिसको बोध होता है पर शब्द को सुनने पर, शब्दार्थ का ज्ञान होने पर जिसको बोध होता है, वह जो बोधा है, वह जो व्यक्ति है, वह जो चेतन है, वह उस वह साकांक्ष होता है, उसमें आकांक्षा वस्तुतः रहती है। आगे फिर कहते हैं कि सत्यम, ये अभी आपने जितने भी विचार प्रस्तुत किए, पहले कहा कि पद साकांक्ष होता है, फिर आपने कहा कि पद नहीं साकांक्ष होते, पदार्थ साकांक्ष होता है, फिर आपने कहा कि आकांक्षा जो है चेतन निष्ठ धर्म है, तो पदार्थ भी जो है वस्तुतः आकांक्षा से युक्त नहीं होता, उसके लिए कहा सत्यम कि आपने सही फरमाया है। तो फिर कैसे जो है ये कहा गया कि पदार्थ साकांक्ष होते हैं, पद साकांक्ष होते हैं, ये फिर नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहा गया तो कैसे कहा गया, उस का उत्तर जो है, उसका समाधान जो है यहाँ पर ये देना चाह रहे हैं, लेकिन अभी पाठ यहीं रखते हैं, टाइम बहुत हो गया।